Welcome back to today's session. आप सबके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये जो यहां परम ज्ञान हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? इतने सारे जो बाबा के बच्चे यहां बैठ के सुनाते हैं, इनको कौन पढ़ाता है? आया सबके मन में ये ख्याल? आया तो होगा, है जी. जो परमात्मा का वायदा है कि हे बच्चे, जब आत्मा के स्वधर्म की ग्लानी होगी, तब तब मैं सृष्टि पे अवतरित होऊंगा और पुनः मैं सत्य धर्म की स्थापना करूंगा. और फिर से आप सभी बच्चों को सत्ययुग स्वर्ग का वर्षा देके इस सृष्टि पे सत्य धर्म की स्थापना कर वापस चला जाऊंगा. तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सविता दीदी बैठे हैं. इनका एक हाथ से सभी ताली बजा के, एक हाथ से भी ताली बजती है यहां पर, ऐसी वाली भी बजती है, साइलेंस वाली, कोई बात नहीं. तो कैसे इस सृष्टि पे परमात्मा आए, किसके तन में आए, कौन सा वो भाग्यशाली रथ था? भाग्यशाली रथ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भागीरथ. और उन्होंने कौन सी वो गंगा प्रवाह करी? वो गंगा जहां जहां गई, उस सागर के बच्चे जो मरे पड़े थे ना, उस ज्ञान की गंगा में जीवित हो गए. यही तो है हमारे शास्त्रों में. पर वो पानी की गंगा समझ गए हैं, बात स्पिरिचुअल गंगा की है. तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज पूरी इन्हीं बातों को हमारे अंदर अच्छी तरीके से धारण कराने के लिए हमारे बीच में रेस्पेक्टेड डॉक्टर सविता दीदी जी आए हैं. मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देता हूं आपको. डॉक्टर सविता दीदी, शी हैज डन हर MBBS फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1989. और दीदी जी ने, शी हैज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस, उसके बाद शी ज्वाइंड अवर ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल विश्वविद्यालय में सिंस चाइल्डहुड. बचपन से उनको बहुत ज्यादा ज्ञान के प्रति लगाव था. तो बचपन से शी हैड एन इंक्लिनेशन एंड शी केम इन कॉन्टेक्ट विद ब्रह्मा कुमारी इन 1975. शी अडॉप्टेड द कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ टू सर्व द मैनकाइंड सिंस 1988. She has great interest in bringing awareness to the people about their health and spirituality. आप जो उस तरफ चित्र देख रहे हैं, जो यज्ञ की, जो हमारी सबसे बड़ी दादी जी हैं, दादी जी प्रकाशमणि दादी जी, तो डॉक्टर सविता दीदी was the family physician of our revered दादी प्रकाशमणि जी, who was the chief administrative head of Brahma Kumaris earlier. Didi ji has traveled widely in various parts of India to educate people on healthy lifestyle and meditation. She is also the national coordinator of Women Wing, Nari Sashaktikaran, Women Wing of Brahma Kumaris. In the year 2001, which was declared as Year of Women Empowerment by Indian government, she participated in All India Women Spiritual Empowerment Campaign organized by the Brahma Kumaris for upliftment of the women. She is a faculty member of Brahma Kumaris Academy for a Better World and delivers lectures on stress management, healthy and happy living, meditation as medicine, art and science of positive thinking, anger management, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज. मैं आपको बताना चाहूंगा, दीदी जी उन विख्यात बाबा के बच्चों में से हैं जिनको आज तक कभी गुस्सा नहीं आया है. ये दीदी जी की कहावत है ना, दीदी के लिए. शी हैज डिलीवर्ड मोर देन 100 लेक्चर्स एंड कनेक्टेड वर्कशॉप्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, NSG, and also in medical and engineering colleges, various schools, various jails, etc. She has traveled to UK and United States of America to bring spiritual and health awareness in people over there. She has also participated in many national and international conferences organized by the Brahma Kumaris World Spiritual University. Now over to Didiji for enlightening us about the Yajna history and the source of spiritual knowledge. Om Shanti.
Om Shanti. Om Shanti. पिछले तीन चार दिनों में जो भी आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग आपने सुना और अभ्यास किया, आज वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे बता रहे थे सोर्स क्या है उसका, वो हम समझेंगे। तो ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का पूरा इतिहास, कैसे इसका शुभारंभ हुआ और आज वर्तमान में 140 से भी अधिक देशों में, पांचों महाद्वीपों में करीब 8,000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, जिसमें 12 लाख से भी अधिक नियमित विद्यार्थी हैं और करोड़ों जो हैं वो इनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई सन 1936 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा का साकार माध्यम लिया, क्योंकि वो स्वयं निराकार हैं तो उन्हें अपना कार्य करने के लिए शरीर का आधार चाहिए, तो उन्होंने जिसका आधार लिया उनको नाम दिया पिता श्री ब्रह्मा बाबा। लेकिन वो अपने लौकिक जीवन में दादा लेखराज के नाम से प्रसिद्ध थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और सुप्रसिद्ध व्यापारी थे। आपका व्यापार राजाओं महाराजाओं से था, क्योंकि उस समय में ये प्रिंसली स्टेट्स थे, भारत में ब्रिटिश रूल था 1936 में, और अलग अलग राजाओं के जो थे वो अपने अपने स्टेट थे। तो खास आपका नेपाल, उदयपुर, बड़ौदा, कलकत्ता, मुंबई आदि में बिजनेस अधिक फैला हुआ था, और यहाँ के राजाओं से भी आपके समीप के संबंध थे, जैसे पारिवारिक संबंध होते हैं इस तरह के संबंध थे। और पिताश्री जी बहुत धर्म परायण थे, आप वैष्णव कुल के थे, तो जैसे एक संपूर्ण सात्विक जीवन आप अपना जीते थे, प्रतिदिन गीता पाठ करना नियम से, चाहे बिजनेस के काम से सफर भी करते थे तो भी सफर में भी वो अपना नियम से गीता पाठ करके फिर अन्न जल ग्रहण करते थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र आपके पॉकेट में रहता था, खास श्री नारायण की भक्ति आप करते थे, और कभी भी आपने अपनी पार्टियों में भी नॉन वेजिटेरियन या शराब नहीं परोसा। तो जब राजाएं महाराजाएं आपकी पार्टी में होते थे तो वो यही कहते थे कि आपकी पार्टी बहुत फीकी रही, तो वो कहते थे कि हम आपको हीरे देते हैं और आप तो हमें उसके बदले में कागज के नोट देते हैं, तो आपके लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। मतलब इतना अधिक वो अपने नियमों के प्रति दृढ़ थे। अपना लौकिक जीवन जो था वो उनका इस प्रकार का था, और काफी गुरु भी किए आपने अपने जीवन में। जब आपकी 60 वर्ष की आयु थी, तो 60 वर्ष की आपकी आयु में आपको ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा हुई। वैसे भी उस समय में वानप्रस्थ माना जाता था, 60 वर्ष की आयु में प्रवेश करना माना वानप्रस्थी हुए हैं। जैसे जीवन के 4 आश्रम माने गए हमारी संस्कृति में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम और ये वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ऐसा आपके मन में था कि अब बहुत धन कमाया है अपने जीवन में और अभी समय है कि भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, ईश्वर तक पहुंचा जाए। तो उसी प्रयास में आपने 12 गुरु किए और अपने गुरुओं से वो काफ़ी प्रश्न पूछते थे तो वो कई बार उनके जवाब नहीं दे पाते थे, तो वो यही कहते थे कि आपके प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। अपने लौकिक जीवन में आप जितनी भी कमाई होती थी उस कमाई का कुछ हिस्सा आप गरीबों को अवश्य दान करते थे। तो जैसे कहा कि सत्य की खोज में अपनी उस आयु में वो थे। आपका ये लौकिक परिवार भी दिखाया है, आपके 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी उस आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक एक बेटे की और एक बेटी की शादी आप कर चुके थे। तो जब ये प्रयास कर रहे थे अपना, तो बॉम्बे में आपका एक घर था, क्योंकि बॉम्बे में भी बाबा का बिजनेस था काफी, तो वहां भी बाबा का घर था। उनको दादा कहते थे, पर फिर अभी जब परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा उनको प्यार से कहा गया। तो बाबा का जो घर था वहां पर वो ध्यान कर रहे थे और उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उनको कहा, अहम चतुर्भुजम तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूँ और वही तुम हो। तो उनको ये साक्षात्कार से बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो विष्णु के ही भक्त थे, शिव नारायण के भक्त थे, और अपने ही इष्ट का दर्शन हुआ तो उससे अधिक खुशी उनके लिए क्या हो सकती थी। तो उन्होंने ऐसे समझा कि गुरु की कृपा से मुझे ये साक्षात्कार हुआ है। तो उन्होंने अपने गुरु को बहुत खुशी खुशी वर्णन किया कि ये मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, लेकिन देखा कि गुरु इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और गुरु ने कहा भी कि ये मेरी कृपा नहीं है, ये तुम्हारी अपनी भगवान के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है कि जो भगवान ने तुमको दर्शन दिए। मेरे को तो आज तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर उनको इस बात को लेकर के जिज्ञासा हुई और उन्होंने अपने लिए थोड़ा वक्त निकाला। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, गंगा किनारे उनका बंगला था, तो वो वहाँ गए और काफ़ी समय वो अपना ध्यान में व्यतीत कर पाए, एकांत मिले उनको, इस भाव से वो वहाँ गए। तो वहाँ पर जब वो ध्यान करते रहे तो उनको कुछ और साक्षात्कार हुए परमात्मा के द्वारा, जिसमें एक मुख्य था इस पुरानी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार उन्होंने देखा। उनको इस बारे में बिल्कुल अज्ञान था, अनभिज्ञ थे वो, लेकिन उन्होंने देखा कि आसमान से कोई आग का गोला गिरा। उस जमाने में बॉम्ब्स नहीं बने थे, 36 की बात है, 45 में पहली बार बॉम्ब्स का प्रयोग हुआ, लेकिन उन्होंने अपने साक्षात्कार में देखा कि कोई गोला गिरा, आग निकली इतनी, लाखों लोग मर गए उसके अंदर। और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज बहुत जोर से आ रही हैं और उसमें लोग मर रहे हैं। तीसरी तरफ उन्होंने देखा सिविल वॉर, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारकाट कर रहे हैं। तो ऐसा तो उन्होंने सोचा नहीं था, तो जैसे कि उनकी चीख निकल गई कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, भगवान मुझे क्या दिखा रहे हैं, यार ये कब क्या होने वाला है। तो लेकिन तुरंत बाद उनको फिर एक साक्षात्कार हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ आत्माएं जो हैं, लाइट्स जो हैं, वो आसमान से उतर रही हैं और वो कोई देवी बन जाती है, कोई देवता बन जाता है, और एक बहुत सुंदर स्वर्ग की दुनिया है, संपूर्ण सुख जहां हम समझ सकते हैं कि जहां कोई प्रकार का दुख अशांति अभाव नहीं है, इतनी सुंदर दुनिया है। और कोई आवाज उनको कहती है कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी है। तो यहां भी अब उनको ये समझ में नहीं आया कि कौन कह रहा है मुझे, और ऐसी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया जो स्वर्ग है वो मैं कैसे बना सकता हूं, मैं तो इस दुनिया का एक साधारण इंसान हूं। तो इस तरह से जब ये विनाश का जो खास साक्षात्कार हुआ, पिता श्री जी को इससे बहुत वैराग्य आया अपने जीवन में, और जो हीरे जवाहरात का उनका बिजनेस था, वो बिजनेस हालांकि काफी फ्लरिश्ड था, लेकिन उन्होंने अपने भागीदार को कहा उस समय, पहले से भी वो सोचते थे कि मुझे अभी अपना बिजनेस समेटना है, लेकिन अब उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे अब ये हीरों का व्यापार नहीं करना है, जो परमात्मा मुझसे करवाना चाहते हैं, जैसे उनको इशारा मिला कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी है, तो अब मुझे वो कार्य करना है, ईश्वरीय कार्य करना है। और उन्होंने अपने पार्टनर, उनके जो भागीदार थे, उनको कहा कि अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो अभी हम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। और कलकत्ता में थे उनके जो पार्टनर थे, और उनके साथ उन्होंने वो पूरा किया। और पिताश्री जी जो थे वो हैदराबाद सिंध से थे, उनका जो नेटिव था वो हैदराबाद सिंध में, जो अब पाकिस्तान में है, पहले तो वो भारत ही था। तो वहां वो अपने घर में आ गए जहां सारा परिवार रहता था, और जैसे आपका नियम था कि प्रतिदिन वो गीता पढ़ते थे, सत्संग करते थे, तो यहां भी वो प्रतिदिन आकर के और अधिक नियम से वो अपना सत्संग करने लगे, और गुरु को भी वो समय प्रति समय बुलाते थे। तो यहां एक दिन जब वो गुरु के सत्संग में बैठे थे, उनके गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, जिसे कहेंगे कि अगर गुरु ने कह दिया दिन को रात, तो माना रात ही है, अगर आधी रात को भी गुरु ने कहा कि आपको आना है, मुझे काम है, तो ये नहीं सोचेंगे कि आधी रात है, सुबह चले जाएंगे, नहीं, माना गुरु ने बुलाया है, माना जाना है। तो ऐसे वो अपने गुरु को मानते थे, लेकिन उस समय गुरु का प्रवचन सुनते हुए उनको लगा कि कोई खींच रहा है, तो वो उठकर चले गए। कभी भी वो अपने गुरु के प्रवचन को छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन जब उठकर गए तो उनकी बहू ने सोचा कि शायद दादा की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो कभी उठते नहीं हैं। तो वो भी उनके पीछे पीछे गई कि उनको शायद मेरी जरूरत हो, तो देखा कि वो अपने कमरे में जाकर बैठ गए, गद्दी थी वहां, गद्दी पर बैठ गए, और बैठे तो सीधा वो ध्यान अवस्था में चले गए। और उनके चेहरे पर जो बहू पहुंची, उसने देखा कि एक अलौकिक तेज है, और वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, वहीं वो दरवाजे पर ही रुक गई। और उसी समय पिताश्री जी ने जो साक्षात्कार किया, और उनके तन में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, वो जो ज्योति का साक्षात्कार उन्होंने किया, और उन्होंने उनके मुख से शब्द उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे पांच शब्दों में परमात्मा ने ये अपना परिचय दिया कि मैं सदा आनंद स्वरूप परमात्मा शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप परमात्मा शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप परमात्मा शिव हूँ। और फिर जब वो नॉर्मल हुए, तो फिर उनकी बहू ने उनको पूछा कि दादा आप क्या देख रहे थे, क्योंकि वो शब्द उन्होंने भी सुने। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक लाइट को देखा, एक माइट को देखा, और वो मेरे में प्रविष्ट हुई और उसने मुझे ऐसा कहा। तो उसके बाद उन्होंने उन्हें समझ में आया कि जो भी साक्षात्कार मुझे हुए हैं वो परमात्मा शिव के द्वारा हुए हैं, और अब वो जब अपना सत्संग शुरू करते थे तो वो ओम की ध्वनि से अपना सत्संग शुरू करते थे, तो इसीलिए उनका नाम ओम मंडली के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। और एक दूसरी और अद्भुत बात होने लगी कि जो पिताश्री जी को साक्षात्कार हो रहे थे अभी तक, वो हैदराबाद सिंध में और लोगों को भी होने लगे। और वो केवल माना जो साक्षात्कार उन्होंने किए उस तरह के नहीं, लेकिन श्री कृष्ण या जो जिसके इष्ट थे, जो जिसकी पूजा करते थे, जैसे सिख धर्म में गुरु नानक देव जी को भी बहुत मानते हैं, तो कुछ लोगों को वो साक्षात्कार, कुछ लोगों को जो श्री कृष्ण के भक्त थे उनको श्री कृष्ण के साक्षात्कार, जो देवी के भक्त थे उनको देवी के साक्षात्कार, इस तरह से साक्षात्कार होने लगे। और साथ साथ में उनको पिताश्री जी भी दिखाई देते थे, यानी एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध मनुष्य भी उनको दिखाई देते थे, यानी एक इशारा मिलता था कि आप इनके पास जाओ। तो धीरे धीरे जो ये सत्संग बढ़ने लगा, तो वो पढ़ते तो गीता थे, लेकिन अब क्या होता था कि वो गीता पढ़ना शुरू करते थे लेकिन वो गीता रह जाती थी, छूट जाती थी, क्योंकि परमात्मा शिव की प्रवेशता उनके तन में होती थी और फिर परमात्मा उनके द्वारा जो ज्ञान देते थे और सामने जो भी सुन रहे होते थे वो उस ज्ञान के अनुभव में चले जाते थे, यानी ध्यान अवस्था में चले जाते थे। जैसे आत्मा का ज्ञान आपने यहाँ समझा, तो ये परमात्मा ने उस समय ही ये आत्मा का ज्ञान, सबसे पहला जो ज्ञान मिला सभी को, स्वयं का सत्य परिचय, मैं कौन हूँ, तो ये ज्ञान जैसे मिला तो वो आत्मा का सिर्फ सुनते नहीं थे, हमने जैसे सुना, लेकिन वो अनुभूति में चले जाते थे, आत्मा अनुभूति में चले जाते थे। फिर जैसे उन्होंने परम धाम का परिचय दिया, तो परम धाम का परिचय दिया तो वो परम धाम का अनुभव करने लगते थे, स्वयं आत्मा जो वो महसूस करती थी कि मैं अपने उस निज धाम में हूँ जहाँ से कि मैं इस सृष्टि पर आई हूँ। तो ये ओम मंडली में ये चीज़ें जब होने लगी तो फिर लोग कहते थे कि यहाँ पर तो पाई पैसे में साक्षात्कार हो जाता है। वैसे कहते हैं कि आप जन्मों तक तपस्या करते हैं तो भी भगवान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, लेकिन ओम मंडली में जो जाता है उसको आसानी से साक्षात्कार हो जाते हैं। तो उसमें एक कन्या जिनका नाम था राधे, ओम मंडली में आई तो उनका ओम राधे कहा गया। तो ये बहुत ही होनहार छात्रा थी, यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी वो अपने स्कूल में उस समय। और जब ये आई पिताश्री जी के पास, एक्चुअली इनकी माँ आई थी क्योंकि इनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था, वो बिजनेस करते थे, बिजनेस में उनको काफ़ी लॉस हुआ तो उसका असर आया और वो अचानक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो माँ जो है वो बहुत दुखी थी इस बात को लेकर के, और जब उसे पता चला कि ओम मंडली का सत्संग में जाने से शांति मिलती है तो वो यहाँ आई। और पहले दिन में ही उसका जो रोना था, वो रोज जो रोती थी, वो देखा बेटी ने कि माँ जो है उसका रोना बंद हो गया है, इसके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है, तो पूछा कि क्या बात है ना, आप बदली हुई लगती हो। तो उसने कहा मैं ओम मंडली में गई थी। और फिर उसने बताया कि कैसे वहाँ दादा जो हैं वो ज्ञान देते हैं, तो तुम भी जाओ। तो जब ये वहाँ गई तो पिताश्री जी को देखते ही, मतलब जब पहली बार उनसे मिले तो उनको लगा कि मैं सही स्थान पर आ गई हूँ। जैसे होता है ना, अंदर में एक खोज होती है कि हाँ मुझे जीवन में ये करना है, ऐसा मुझे मिलना चाहिए। तो बाबा से मिला और जब उनसे ज्ञान सुना तो उनको ऐसा अनुभव हुआ, और वो दिन से वो भी ओम मंडली में नियमित जाने लगी। और आप गायन कला में बहुत निपुण थी, तो उस समय बाबा जो भी गीत बनाते थे वो गीत भी आप गाते थे। ये फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। और ये जो फोटो देख रहे हैं आप, जो चित्र है दादी प्रकाशमणि जी का, उनकी युवावस्था है, वो भी उस समय 14-15 साल के थे, 10th क्लास में पढ़ते थे। और उनको सपने आते थे, श्री कृष्ण उनको सपने में दिखाई देते थे और साथ साथ में जैसे कहा कि विद्याश्री जी का भी चित्र उनको दिखाई देता था, वृद्ध पुरुष का भी चित्र दिखाई देता था और जैसे वो इशारा कर रहा है, उनको अपने पास बुला रहा है श्री कृष्ण। तो उन्होंने ये बात अपने पिताजी को सुनाई क्योंकि ये उन्होंने कई बार सपने में देखा। तो इनके पिता ज्योतिषी थे और उनको पता था इनकी जन्म पत्री से कि ये जो है मीरा, श्री कृष्ण की मीरा बनने वाली है। तो जब उन्होंने ऐसा जिक्र किया तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगी, उन्होंने कहा कि है ना इनका जीवन, तो जीवन में ये संत बनेगी इसीलिए इनको ऐसे सपने देखने में आते। पर फिर उन्होंने अपनी क्लासमेट जो थी इनकी उनसे जिक्र किया कि मुझे ऐसा सपना बार बार आता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पिताश्री जी को नहीं जानते थे, इनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनका संबंध था जो इनकी फ्रेंड थी। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक दादा रहते हैं जो एक सत्संग चलाते हैं और उस सत्संग में जो भी जाते हैं उनको भी ऐसे साक्षात्कार होते हैं, उनको भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, तो तुम मेरे साथ उस सत्संग में चलो तो हो सकता है कि वो वही हो जो तुम्हें दिखाई देते हैं। तो दिवाली की जब छुट्टियां थी तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया और वो गए वहां ओम मंडली में। तो जैसे ही वो पिताश्री जी के सामने पहुंची तो वही कि उनसे दृष्टि मिलते ही वो उसी ट्रांस में चले गए जो वो सपने में देखते थे, वही श्री कृष्ण और वही वो तो सामने ही है। तो वो समझ गई कि मेरे को यहां से ही इशारा मिल रहा था। और उस दिन के बाद से जैसे कि वो भी उनके नियमित सदस्य और ये ओम मंडली बढ़ते बढ़ते जो है वो एक बड़ी जैसे एक संस्था का रूप लेने लगी। तो पिताश्री जी ने जो अपनी चल अचल संपत्ति थी उसका एक ट्रस्ट बनाया, काफी धनवान थे वो उस समय क्योंकि वो ज्वेलर थे, तो अपना सारा धन उन्होंने ट्रस्ट बनाकर 5-7 जो भी माताएं बहनें जो हैं वो अधिक संख्या में आते थे तो 7 बहनों का, उसमें 5 कुमारी थी और 2 माताएं थी, वो ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति उन्होंने उनके नाम कर दी कि ये मेरी संपत्ति जो है वो ईश्वरीय कार्य के लिए है, इसे मैं अपने लौकिक कोई भी कार्य में प्रयोग नहीं करूँगा। और उनके जो बेटे थे उनमें एक बेटा तो छोटा था, एक बेटे की शादी हो चुकी थी, तो मतलब वो भी अपना कमाएंगे और अपना जीवन अपना यापन करेंगे, मेरी संपत्ति में से उनको यहाँ इसमें से कुछ नहीं देना है। तो जब ये कार्य वृद्धि को पाने लगा, जिनको साक्षात्कार हुए थे उनके लिए तो ये बहुत अलौकिक अनुभव थे, उनके जीवन में तो महान परिवर्तन आने लगा, लेकिन जिनको नहीं हुए और खासकर सिंधी, क्योंकि ये सिंध था है, सिंध प्रांत है वहाँ पाकिस्तान में, तो ये सिंधी ही लोग ज़्यादा थे और वो बिजनेस करते थे, तो बिजनेस के लिए विदेशों में पति जो हैं वो थे और जब वो लौट कर आए तो देखा कि परिवार का माहौल काफ़ी बदल चुका है, तो वो तो ड्रिंक करते थे, नॉनवेज लेते थे, लेकिन जब घर लौटे तो पत्नियों ने मना कर दिया नॉनवेज बनाने के लिए और ड्रिंक वगैरह के लिए भी, सात्विक भोजन सात्विक जीवन हो गया था उनका। तो फिर थोड़ा विवाद होने लगा घरों में इस बात को लेकर के, तो फिर उनको लगा कि ये तो बिजनेसमैन, ये कोई गुरु भी नहीं, ये कहाँ से ये सब शुरू कर दिया, ये कलकत्ता से यहाँ आए हैं, कुछ सीख करके तो नहीं आ गए, कोई विद्या सीख करके तो नहीं आ गए, ये मना लोगों को जो साक्षात्कार होते हैं, एक जैसे दो पार्टी हो गई, कहने का भाव जिनको साक्षात्कार हुए वो ग्रुप और एक जिनको नहीं हुए, जिनको ऐसा कोई अनुभव नहीं था तो वो उन पर संदेह करने लगे, तो विरोध भी होने लगा समाज में और वो विरोध बढ़ने भी लगा, यहां तक कि कोर्ट तक पहुंच गए कि ये जो हमारा परिवार है ये सब जो हैं इनको बहका रहे हैं और है ना हमारे परिवार का जो है ये घरों में जो है कलह होने लगा है इस बात को लेकर के, तो पिताश्री जी ही नहीं लेकिन मातेश्वरी जी को भी कोर्ट में जाना पड़ा उसके लिए। जैसे विरोधियों ने उस समय बाबा को बच्चों के लिए, क्योंकि परिवार के परिवार उसमें जुड़े थे तो छोटे बच्चे भी थे, तो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने बोर्डिंग खोला था, बोर्डिंग स्कूल खोला था। तो जो सिंध समाज के मुख्य लोग थे उन्होंने वो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को भी आपने रखा है तो ये बच्चे तो नाबालिग हैं, जैसे किस तरह से केस कर सकते हैं, उन्होंने कोई कोई पॉइंट उठाए। तो ये जैसे बच्चों को स्टॉप कर रखा है उन्होंने, पिकेटिंग किया उन्होंने, बच्चे नहीं जाएंगे अंदर उस बात के लिए। फिर जैसे कोर्ट में बाबा को जाकर के जवाब देना पड़ा, तो फिर खास मातेश्वरी जी जो हैं उन्होंने कोर्ट में बहुत निर्भयता से उत्तर दिए जो भी जज ने सवाल किए। और फिर जब उसने देखा कि क्योंकि हमारा भारत तो धर्म निरपेक्ष है, यहाँ हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जिस भी ईश्वर को माने या और उसकी आराधना करे, तो उन्होंने देखा कि ये निर्दोष हैं और ये तो सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं। तो फिर उन्होंने उनको मतलब जैसे बरी करते हैं, पूरी तरह से निर्दोष रूप से मुक्त कर दिया उनको। और पर यहाँ फिर हैदराबाद सिंध से पिताश्री जी कराची में आ गए, क्योंकि हैदराबाद सिंध का जो माहौल था वो माहौल जो विरोध हुआ उसकी वजह से बिगड़ चुका था। तो फिर उन्होंने समझा कि ये तो मेरा कार्य नहीं है, ये सब साक्षात्कार तो परमात्मा स्वयं करा रहे हैं, और उन्हें खुद को भी नहीं मालूम कि वो क्यों ये सब करवा रहे हैं। अभी ज्ञान तो कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सिर्फ साक्षात्कार थे और अनुभव थे, बस ये दो ही चीजें थी और उसी के आधार पर उनका ये ग्रुप बना हुआ था। तो फिर अभी एकांत चाहिए था, मतलब साधना करने की जरूरत थी। तो फिर हैदराबाद सिंध से ये शिफ्ट होके आ गए, उन्होंने कराची में घर लिया अपना। लेकिन जब पिताश्री आए तो जो भी 400-500 लोग जुड़े हुए थे उनके साथ, वो भी फिर वहां नहीं रह सके और उनके पीछे पीछे वो लोग भी कराची आ गए। और कराची में ये पूरा ग्रुप, फिर इन्होंने और भी घर ले लिए सबके हिसाब से कि सब रह सकें, और वहां पर इन्होंने अपनी करीब साधना की 14 वर्ष तक। और उस दौरान ही परमात्मा शिव ने ये सारे राज स्पष्ट किए जो आपने यहाँ राजयोग सुना, 3 दिन के अंदर वो उन्होंने 14 साल में समझा। धीरे 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 आत्मा का ज्ञान, स्वयं परमात्मा ने स्वयं का ज्ञान, मेरा स्वरूप रूप धाम कर्तव्य क्या है, परम धाम कहाँ है, तीनों लोकों का ज्ञान, फिर तीनों कालों का भी ज्ञान, इस सृष्टि के तीनों कालों का, जो सतयुग का साक्षात्कार किया कि इस सृष्टि में प्रारंभ में वो सतयुग का समय था, संपूर्ण स्वर्ग का समय था, फिर कैसे कैसे समय गुजरते हुए और अभी हम वर्तमान में अब कलयुग में पहुंच चुके हैं, और कैसे अब धर्म ग्लानि का समय है, और फिर कैसे परिवर्तन होना है जो महाविनाश का साक्षात्कार, ये सारे राज परमात्मा ने धीरे धीरे उनको ये स्पष्ट करते गए। और इस बीच में भारत आजाद हो गया, 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के समय ये जो उन्होंने साक्षात्कार किया था 45 में, वो बॉम्ब गिर गया, वो देख लिया उन्होंने कि कैसे एक छोटा बॉम्ब लाखों लोगों को खत्म कर सकता है, माना वो अग्नि अस्त्र की तरह ही है, आग ही निकलती है उससे, और मार काट हो रही है धर्म के नाम पर। वो 47 में जब भारत आजाद हुआ तब देखा उन्होंने अपने सामने वो दृश्य, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में ही थे उस समय, कराची में थे। लेकिन ये बहुत ईश्वर की कृपा या शक्ति थी उनके साथ कि मुस्लिम्स लोग जो हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने, और ही आकर के उनको सब जैसे कि सब्जियां ला करके देना, मना हर तरह से क्या आवश्यकता है उनकी, जो डेली की नियमित आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए भी उनको बाहर न जाना पड़े, वो सब आकर के उनके लिए वो खुद ही करते थे और वो मानते थे कि ये अल्लाह लोग हैं। जैसे सफ़ेद वस्त्र पहनते थे तो इन पर बहुत विश्वास था उनका। और उसके बाद भी माना हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद भी 3 साल तक 1950 तक वो कराची में ही रहे। लेकिन 1950 तक आते आते बहुत सारी चीज़ें जब परिवर्तन होने लगी, एक तो इन सब के संबंधी भारत आ गए थे क्योंकि जितने भी वहाँ हिंदू थे वो वहाँ अब रहना नहीं चाहते थे, तो सारे के सारे भारत में आ गए थे। तो इनके रिश्तेदार इनको दबाव डालते थे कि अब आप वहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो अब मुस्लिम देश हो गया है, आपको जो भी करना है इधर आकर करिए, भारत में करो जो भी करना है। फिर परमात्मा शिव की भी प्रेरणा थी कि भारत से ही ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व तक जाएगा, पूरे विश्व का जो कल्याण होना है वो भारत से ही होगा, भारत ही विश्व गुरु है, तो आपको भारत में ही जाना है और कहीं कोई पहाड़ी स्थान पर वहां ही ये तपस्या करनी है। तो फिर इन्होंने भारत में वो स्थान ढूंढना शुरू किया और माउंट आबू जो है, आबू ये नज़दीक है बहुत, काफ़ी कराची के ये नज़दीक पहाड़ी स्थान, और इनके गुरु भी यहाँ आ गए थे जो पिताश्री जी के गुरु थे, इसके पहले लास्ट जो उनके गुरु थे वो भी यहाँ माउंट आबू में, तो उनको ये स्थान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी प्रेरणा दी कि आप सभी यहाँ माउंट आबू में आ जाओ। तो फिर इन्होंने भारत आने की तैयारी की और यहाँ पर वो शिप से एक शिप कर लिया पूरा, क्योंकि काफ़ी लोग थे, 300-400 लोग थे, तो ये शिप से ओखा बंदरगाह पर उतरे और फिर ट्रेन में ये आबू पहुँचे। और यहाँ आबू में बहुत सारे राजाओं के, क्योंकि राजस्थान में बहुत राजाएं हुए, तो हर एक राजा ने यहाँ पर अपना अपना पैलेस बना रखा था। इसमें यहाँ पर जयपुर पैलेस है, बीकानेर पैलेस है, अलवर पैलेस है, भरतपुर राजा की भी कोठी थी, उसका नाम ब्रज कोठी था। तो इन्होंने कई स्थान देखे पर उसमें से ब्रज कोठी इनको पसंद आया और ये सब भी रह सके, इतने कमरे थे उसके अंदर, तो ब्रज कोठी में आकर के आप यहाँ माउंट आबू में रहे। करीब 2 साल तक वहाँ ब्रज कोठी में रहे। कुछ परीक्षाएं भी आई क्योंकि एकदम स्थान परिवर्तन हुआ और काफ़ी साल हो गए थे और पिताश्री जी का जो धन था, क्योंकि इतने सब थे और कोई कमाई का साधन तो नहीं था, अपनी तपस्या साधना करते थे और काफ़ी कुछ जब शिफ्ट हुए तो छूट भी गया, तो यहाँ आकर के थोड़ा सा धन की तंगी भी महसूस हुई। और फिर विचार किया, क्योंकि अब तक ज्ञान में भी ये परिपक्व हो चुके थे, ज्ञान की गहराई समझ में आ गई थी और क्यों परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है ये भी स्पष्ट हो गया था कि नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना और इस पुरानी अधर्म की जो कलयुगी दुनिया है उसका परिवर्तन करने के लिए ही परमात्मा इस धरा पर आए हैं और पूरे विश्व का परिवर्तन होना है, केवल हम ही नहीं लेकिन ये पूरे विश्व तक ज्ञान को पहुंचाना है। तो फिर यहां से ही सेवाएं शुरू हुई। लेकिन मम्मा मातेश्वरी जी जो ओम राधे जो बताया वो मातेश्वरी जी कहलाई, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। शुरू से ही पिताश्री जी का और परमात्मा शिव की ये प्रेरणा रही कि विद्यालय का संचालन जो है वो बहनों के द्वारा होगा। तो जब इसने संस्था का रूप लिया, नाम मिला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो नाम ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया और फर्स्ट हेड जो है वो ओम राधे जो मातेश्वरी जी कहलाई, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। और आज 24 जून जो है उनकी पुण्यतिथि भी है, 24 जून 1969 को मातेश्वरी जी अव्यक्त हुए थे। तो उन्होंने इस कार्यभार को संभाला और पिताश्री जी और मातेश्वरी जी के निर्देशन में जो हैं सेवाएं, सबसे पहले दिल्ली में, यूपी में, लखनऊ, कानपुर में यहाँ सेवा केंद्र खुले और विधि यही रही। जैसे इन लोगों को साक्षात्कार हुए, अनुभूतियाँ हुई और फिर उसके बाद ज्ञान हुआ, ऐसे ही ये जहाँ जिस स्थान पर जाते थे वहाँ पर किसी ना किसी को साक्षात्कार होते थे और जिनको साक्षात्कार होते थे फिर वो निमंत्रण देते थे कि आप आइए हमारे स्थान पर, हम आपके लिए प्रबंध करेंगे और आप यहाँ हमारे यहाँ सेवा करिए, जो ज्ञान आप देते हैं वो हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इस तरह से पंजाब में बहुत सारे स्थानों पर, दिल्ली में और जैसे कहा यूपी में, मुंबई में, प्रारंभ में शुरू में इन स्थानों पर सेवा केंद्र खुलने लगे पिताश्री जी के होते हुए। और मातेश्वरी जी फिर कई स्थानों पर गई, जहाँ जहाँ भी सेवा केंद्र खुले, पहले बहनों को भेजा और जब वहाँ सेवाएं शुरू हुई तो फिर मातेश्वरी जी का भी जाना हुआ। जैसे ये दिखाया है कि कानपुर में गए, लखनऊ में गए, ये दादी प्रकाशमणि जी के साथ हैं वो। और 24 जून जो मैंने बताया आज का ही दिन 1969 को मातेश्वरी जी अव्यक्त हुए थे, उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। और उसके पश्चात जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी पिताश्री जी के साथ, क्योंकि पिताश्री जी अभी थे तो वो दीदी मनमोहिनी नाम था, ये नाम उनको परमात्मा शिव के द्वारा मिले, जैसे प्रकाशमणि दादी जी, अभी वर्तमान में रतन मोहिनी दादी जी हैं, ऐसे ही हृदय मोहिनी दादी जी जो पिताश्री जी के बाद परमात्मा का माध्यम बने, तो ये सब नाम परमात्मा शिव के द्वारा उनको ट्रांस में दिए गए। तो ये सब अलौकिक नाम है, है ना, डिवाइन नेम्स हैं। जैसे एक सांसारिक नाम होते हैं, इस तरह के नाम नहीं है ये। तो ये इनका नाम भी गोपी था, लौकिक नाम जो था इनका गोपी था, लेकिन परमात्मा शिव के द्वारा इनको मनमोहिनी नाम मिला। और ब्रह्मा बाबा जो हैं वो उस जमाने में, ये मीडिया तो नहीं था, है ना, ईमेल या मैसेज जो हम कहेंगे, जो भी आज फास्ट कम्युनिकेशन के साधन हैं, ये सब साधन, फोन था लेकिन टेलीफोन भी बुक करके कॉल होती थी, उस समय इतना आसान नहीं था फोन वगैरह भी करना, तो पत्रों के माध्यम से वो पूरा कम्युनिकेशन करते थे। तो बाबा की झोंपड़ी आपने देखा, साइट सीन किया होगा, पांडव भवन में आपने देखा बाबा की झोंपड़ी है, वहां पर पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो हैं वहां बैठ करके सभी को पत्र लिखते हैं, ये देखा आपने जो स्थान देखा है।
पहले दादी की फिर दीदी, मनमोहिनी दादी को बुलाया,
दीदी नहीं, पिताश्री जी जब अव्यक्त हुए तब फिर दादी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, लेकिन मातेश्वरी जी जाने के बाद दीदी जो थे वो दिल्ली में थे, दिल्ली में जो सेंटर खुले थे वहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने के बाद उनकी आवश्यकता हुई तो उन्हें दिल्ली से आबू बुला लिया गया। लेकिन उनके अव्यक्त, पिताश्री जी जब 1969 में अव्यक्त हुए, शांति स्तंभ देखा है आपने, हाँ, वो उनका स्मृति स्थल है। 18 जनवरी 1969 को जब पिताश्री जी अव्यक्त हुए और उनका अंतिम संस्कार हुआ 21 जनवरी को, उस समय दादी प्रकाशमणि जी यहाँ थे और दीदी मनमोहिनी बाहर किसी सेवा केंद्र पर गए हुए थे सेवा के लिए। तो फिर पिताश्री जी जब उन्होंने लास्ट क्लास कराया, वो बहुत सहज मृत्यु हुई उनकी, मॉर्निंग में उनको थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ ऐसा महसूस हो रहा था, तो उनकी जगह दादी प्रकाशमणि जी ने क्लास लिया। वो बॉम्बे में सेवा कर रहे थे लेकिन आए हुए थे यहाँ आबू में, क्योंकि रिफ्रेशमेंट के लिए ग्रुप आबू आते रहते थे। तो जब वो ग्रुप लेकर आई हुई थी तो ग्रुप तो चला गया, लेकिन पिताश्री जी ने उनको रोक लिया कि दीदी मनमोहिनी यहाँ नहीं है, आप यहाँ रहो और कुछ समय के लिए, जब तक मैं कहूँ तब तक आपको यहाँ रहना है। तो वो यहीं थे उस समय और रात्रि क्लास बाबा ने खुद कराया फिर उस दिन 18 जनवरी को रात्रि क्लास भी होता था, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह नहीं मिला हूँ तो मैं अभी रात्रि क्लास करा करके और जल्दी ही फ्री करके, जैसे वो गुड नाइट क्लास कहते थे उसको, तो लास्ट में क्लास कराते हुए उन्होंने 3 शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो, और फिर कहा अच्छे अच्छा बच्चे विदाई। ऐसे बाबा पहले कभी नहीं कहते थे, माना ये शब्द उन्होंने कहे और वो अपने कमरे में आ गए, जो बाबा का कमरा भी आपने देखा पांडव भवन में, वहीं रहते थे वो। तो उस दादी जी भी उनके पीछे पीछे आ गए और आके उनके रूम में उनके साथ ही थे, तो देखा कि बाबा खटिया पर बैठे हैं और थोड़ा बाबा को वीक लग रहा है, तो दादी ने उनका हाथ पकड़ के कि सपोर्ट दे करके उनको बिठा दें, लिटा दें, तो उतने में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जैसे कि अभी उन्होंने हाथ में हाथ लिया ही था उनको वो करने के लिए, और उनको तो समझ में नहीं आया, उनको लगा कि बाबा जो हैं वो कमजोरी के कारण जो हैं थोड़ा बेहोश हो गए हैं, तो डॉक्टर को तुरंत बुलाया, और जब डॉक्टर आए तो कहा कि वो तो ये तो नहीं है। तो इस तरह से बाबा जो हैं अव्यक्त हुए। तो दादी जी उस समय थी नजदीक में, तो 21 जनवरी को जब परमात्मा शिव का अवतरण, क्योंकि अपने यहाँ ट्रांस मैसेंजर हैं, जैसे बताया कि ध्यान अवस्था में ही ये सारी, ध्यान अवस्था से ही सारी स्थापना हुई शुरुआत में, तो दादी हृदय मोहिनी जी जो थी वो बहुत पावरफुल ट्रांस मैसेंजर थी, माना वो ध्यान अवस्था में डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं, ये वो अवस्था है। तो वो गए ये ट्रांस में कि बाबा से बात करेंगे, कि अचानक वो चले गए, कुछ मैसेज दिए बिना चले गए, तो अब ये कार्य कैसे चलेगा, इसका क्या होगा। वो कभी ऐसा सोचते नहीं थे कि बाबा अचानक चले जाएंगे ना, वो समझते थे लास्ट तक जब तक परमात्मा का ये कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बाबा चले गए तो फिर अब क्या, आगे क्या और कैसे, ये सवाल के जवाब। तो जब वो गए, तो जब वो ट्रांस में गए तो डायरेक्ट परमात्मा शिव की उनमें ही प्रवेशता हुई, पहले ब्रह्मा बाबा के तन में होती थी, अब गुलजार दादी जी, उनका निक नेम जैसे गुलजार दादी जी उनको कहते थे, वैसे दादी हृदय मोहिनी जी, तो वो उनके तन में परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, और फिर उन्होंने दीदी जी को और दादी जी को, दादी प्रकाशमणि जी को और दीदी जी को कंबाइंड रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। तो उसमें चीफ ये थे, वो एडिशनल थे, चीफ दादी प्रकाशमणि जी, और फिर एडिशनल चीफ जो है वो दीदी मनमोहिनी जी रही, और फिर उन्होंने 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को संभाला, जब तक कि फिर दादी जी अव्यक्त हुए, तो इसीलिए वो फिर सेकंड चीफ दादी जी रहे, मातेश्वरी जी, मातेश्वरी जगदम्बा के बाद वो दादी जी रहे। तो जैसे कहा आपको कि परमात्मा का ये विशेष संदेश था कि बहनों के द्वारा ही संचालन होगा, तो आज तक इस दुनिया में, माना द्वापर युग से, कभी भी बहनों को ऐसा स्थान नहीं दिया गया। रादर उस समय बहनों की जो स्थिति थी हमारे समाज में वो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। जब परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई तो घर की चार दीवारी ही उनकी लिमिट थी, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, 5 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, अक्षर ज्ञान हो गया, बस बहुत है। कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन थी उस जमाने में, और अगर वो विधवा हो गई तो बस उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं सोसाइटी में, वो स्थिति थी महिलाओं की जो हालत थी हमारी सोसाइटी में। तो जैसे कि हम कहेंगे कि एक महिला उत्थान का की क्रांति भी हुई, और धर्म के नाम, धर्म के तो कोई स्थान थे ही नहीं उनके लिए, तो आज तक भी, अभी तक भी कहेंगे कि पूरे विश्व के अंदर महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये परमात्मा ने एक नवीनता की। फिर उसके बाद ही लेडीज को समाज में स्थान मिलने लगा और बहुत तेजी से फिर स्थिति में परिवर्तन आया। और जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं या आज हम देखते हैं कि जो वुमेन है वो हर फील्ड में है और सब कुछ कर सकती है, एक विश्वास जो है वो समाज के अंदर वो तब आने लगा। तो ये भी एक परमात्मा का एक विशेष कार्य रहा जो ये परिवर्तन लाया समाज के अंदर। तो आज तक भी अभी भी दादी रतन मोहिनी जी जो हैं वो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं और 100 वर्ष की आयु है आपकी इस वक्त, हम उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। रतन मोहिनी दादी जी इसमें ये जो हृदय मोहिनी दादी जी हैं मेरे लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर, मेरे राइट साइड से इसमें पॉइंटर है। ये आप दादी हृदय मोहिनी जी थे, माने आप भी अव्यक्त हो चुके हैं, आप परमात्मा शिव का माध्यम रहे ब्रह्मा बाबा के बाद, और आप दादी रतन मोहिनी जी हैं जो वर्तमान में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जो 100 वर्ष की आयु आपकी हो चुकी है। और आप दादी जानकी जी ये विदेश सेवाओं के निमित्त रहे, जो 140 देशों में आज अपने सेवा केंद्र हैं, ये आपकी मेहनत आपका ही सारा एफर्ट था। और लंदन में आप 40 वर्षों तक लंदन में रह करके आपने ये सारे विदेशों में 5 कॉन्टिनेंट्स में सेंटर खोलने के निमित्त बने। और दादी प्रकाशमणि जी जो हैं इनके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही और आप 104 साल तक 104 ईयर्स तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और इनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हुए, राजयोग के परीक्षण हुए, क्योंकि विदेश में लोग ऐसे ही स्वीकार नहीं करते, है ना, साइंस की एज है तो प्रमाण मिलना चाहिए, आप जो सुना रहे हैं उसका क्या प्रमाण है। तो अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी में आपके ब्रेन के टेस्ट किए गए, तो ईजी लगाते हैं, ईजी में सारे आपने भी सुना होगा सारा राजयोग के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो उन्होंने 2-3 लोगों को बिठाया, दादी जी के लगाए, उनके अपना स्टाफ उनको लगाया, और फिर और भी कॉमन राजयोगी जो हैं उनको भी लगाया ऐसे, और फिर उनकी वेव्स को स्टडी किया। तो देखा कि दादी जी का जो ब्रेन वेव्स थे वो डेल्टा वेव्स थे, इन ईच एंड एवरी सिचुएशन उनसे वो बातचीत कर रहे हैं तो भी डेल्टा वेव्स हैं, उनसे वो मैथमेटिकल जो सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चंस तो उसमें भी उनके डेल्टा वेव्स ही आ रहे हैं, या उनको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो भी उनको आंसर देते हुए डेल्टा वेव्स ही हैं। लेकिन जब वो अपने स्टाफ का देख रहे थे तो देख रहे थे उसमें बीटा वेव्स आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जब हमारा एक्टिव ब्रेन होता है तो उसमें बीटा वेव्स आते हैं। तो उनको लगा कि शायद दादी जी को जो मशीन लगाई है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो उन्होंने चेंज किया अपने स्टाफ की मशीन लगा दी दादी जी के लिए और दादी जी की मशीन लगा दी उनके ऊपर। तो देखा फिर चेंज हो गया, दादी जी के तो डेल्टा वेव्स ही आ रहे थे, तो उनको फिर विश्वास हो गया कि दादी जी का जो ब्रेन है वो बहुत साइलेंट है और इनका अपने थिंकिंग पर कंट्रोल है और ये अपने थॉट्स को जैसे मैनेज करना चाहती हैं कि कर लेती हैं। पहले उन्होंने कहा आप मेडिटेशन तो नहीं कर रहे हो, तो दादी ने कहा नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूं। हाँ ये जरूर है कि ये मेरा जो लाइफस्टाइल है, यानी मैं हमेशा ही मेडिटेशन में हूं, मैं चाहे जो भी कर्म कर रही हूं वो मेरी मन की अवस्था है, तो वो तो है ही, लेकिन फिर भी जो आप मुझसे एक्टिविटी करा रहे हैं वो मैं कर रही हूं। तो फिर उन्होंने उनको माना और उनको टाइटल दिया द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे अधिक स्थिर मन वाली महिला, हाँ डेल्टा वेमेन, डेल्टा वेमेन भी उन्हें कहा गया। और हम देखते थे 104 वर्ष की आयु तक भी दादी जी 16 से 18 घंटे सेवा करती थी, और आपकी मेमोरी भी तब तक भी शार्प थी, यानी हम भी उनके सामने जाएंगे तो उनको पता होता था मेरा नाम ये है और मैं मतलब क्या सेवा कर रही हूँ, तो वो वंडर लगता था, ये वो आपकी स्पिरिचुअल पावर थी। तो ये दादी जानकी जी बहुत स्पेशल पर्सनालिटी रहे ब्रह्मा बाबा के बाद, और आप जो हैं दादी निर्मल शांता, ये ब्रह्मा बाबा की रियल डॉटर, जो शादी हो चुकी थी जिनकी, और शादी होने के बाद आपकी एक बेटी भी थी, लेकिन इनको साक्षात्कार हुए घर बैठे अपने ही ससुराल में, उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और देखा कि श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं और वो कहते हैं उठो बेटी तुमको विश्व का कल्याण करना है। तो ये अपने पिता के यहाँ जब आए मायके में, उसी शहर में हैदराबाद सिंध में ही इनकी शादी हुई थी और बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, तो जब आए तो उन्होंने देखा घर में सत्संग हो रहा है और जब वो बैठे उसमें तो उनको फिर से साक्षात्कार हो गया। तो इन्होंने भी उस अनुभव से अपना ससुराल छोड़ दिया उस समय, यानी अपने पति का घर छोड़ दिया और ये भी ओम मंडली में शामिल हो गई, और फिर आपने ही कलकत्ता में रह करके समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दी लास्ट तक। आपने भी 100 ईयर्स आपकी आयु थी जब आपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया और अव्यक्त हुए, और ये चंद्रमणि दादी जी, ये आप पंजाब जोन सारा, ये मुख्य ओम मंडली के समय से जो सब साक्षात्कार से आए, यानी उस समय जो सिंध से जुड़े, ये दादियां हम उनको कहते हैं क्योंकि सिंधी भाषा में दादी माना बड़ी बहन, जैसे हिंदू धर्म में दीदी को बड़ी बहन कहते हैं ना, तो वहां दादा माना बड़े भाई और दादी माना बड़ी बहन, तो इसीलिए उनको हम दादी कहते हैं। आप भी सुनते होंगे दादी दादी कहते हैं, तो दादी माना कोई ग्रांड कोई ग्रांड मदर है नहीं, लेकिन वो दीदी माना बड़ी बहने हैं। तो यहाँ पर संबंध गुरु शिष्य का नहीं है कि आप हमारे गुरु हैं और बाकी सब फॉलोवर्स हैं, नहीं, लेकिन आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं, ये एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। ये पिताश्री जी ही नहीं, लेकिन विशेष ब्रह्मा शिव बाबा ने ये हमें ज्ञान और समझ दी। हम अपनी भारतीय संस्कृति में तो मानते हैं कि पूरा वसुधा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसे हम कहते हैं, लेकिन सही अर्थों में हम भाई भाई कैसे हैं, ये भगवान ने वो सत्य ज्ञान दिया कि हम सब आत्माएं हैं और एक ही परम धाम से सृष्टि पर आए हैं, एक ही परम पिता की संतान हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देह के धर्म है, आत्मा का धर्म तो एक ही है। आत्मा का धर्म क्या है वो हमने सीखा, आत्मा का धर्म स्वधर्म क्या है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है, ये जो 7 गुण हैं, जो सतोगुणी है आत्मा, यही आत्मा का धर्म है। और हम कहते हैं हर धर्म तो यही शिक्षा देते हैं, आपस में प्रेम से रहो, शांति से रहो, किसी को दुख मत दो, सबका आदर करो, तो हर एक धर्म क्या सिखा रहा है, हमें यही सिखा रहा है। तो ये आत्मा का धर्म सिखाया उन्होंने, लेकिन बाद में हमने इसे देह के धर्मों में बदल दिया, तो इतने भेदभाव आज संसार में उसके कारण हो गए, धर्मों के कारण। तो ये परमात्मा ने ये संदेश जो दिया कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, और कैसे एक परिवार है, और फिर ये जो बताया कि ब्रह्मा बाबा वर्तमान समय भी अव्यक्त रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1969 में आप अव्यक्त हुए, आपने अपना सूक्ष्म शरीर धारण किया, क्योंकि आत्मा को तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर ये जो हमारा हड्डी मांस का शरीर है, दूसरा शरीर है वो लाइट का शरीर होता है जिसे हम सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस शरीर के साथ बाहर आती है, वो भी इनविजिबल है। जैसे आत्मा इनविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है हम कहते हैं, ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आत्मा कुछ समय रहती है जब तक कि उसे नया शरीर ना मिले। पिताश्री जी ने अभी नया शरीर नहीं लिया क्योंकि अभी परमात्मा का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, अभी सतयुग की स्थापना नहीं हुई है। तो जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अभी भी सेवा कर रहे हैं और उसमें स्पीड बहुत ज्यादा है। स्थूल शरीर की लिमिटेशंस हैं ना, ये जो हमारी कॉर्पोरियल बॉडी है इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो सटल बॉडी है उसकी स्पीड बहुत फास्ट, जैसे लाइट की स्पीड या हम अपने मीडिया की जो स्पीड देखते हैं, है ना, कितना हम इस यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, कितना समय लगता है ना? तो ये जो साइंस के भी नए नए इन्वेंशंस हुए ये भी ज़्यादा समय के इन्वेंशंस नहीं हैं, 50 साल के अंदर के ये सारे इन्वेंशंस हैं। और ये भी परमात्मा शिव को नई दुनिया की स्थापना करनी है और तीव्र गति से वो स्थापना का कार्य संपन्न हो उसके लिए विज्ञान भी इतना एडवांस हुआ है। माना साइंटिस्ट को प्रेरणा देना और उनके द्वारा ऐसे ऐसे साधन, नए नए साधन जो इतना तीव्र गति वाले हों जिसके द्वारा ये कार्य जल्दी से जल्दी सहज संपन्न हो जाए, तो वो स्पीड के साधन भी हम देखते हैं। तो इसी तरह की स्पीड इस वक्त सटल बॉडी में आप जो सेवाएं करते हैं उस तरह का कार्य पिताश्री जी अभी भी सूक्ष्म वतन से कर रहे हैं। आपने समझा, तीन लोक हैं, ये एक फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, जिसमें ये सूर्य चांद तारे ग्रह उपग्रह हैं, और इसके ऊपर जो वर्ल्ड है वो सटल वर्ल्ड है, और फिर उसके ऊपर जो वर्ल्ड है वो है सोल वर्ल्ड जिसे हम परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। ये सब आपने समझा है ज्ञान, लेकिन पिताश्री जी वर्तमान में सटल वर्ल्ड में हैं, आप वहीं निवास करते हैं और वहां से ही ये सारा जो ईश्वरीय कार्य है अभी भी आपके दिशा निर्देश समय प्रति समय मिलते रहते हैं और आपके अनुभव भी अनेक आत्माओं को होते रहते हैं। तो जो हम ज्ञान सुनते हैं उसका जो स्रोत है वो परमात्मा के द्वारा सुनाई गई मुरली है, उसको हम मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को मुरली कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काठ की मुरली है जो श्री कृष्ण बजाते थे ना, मुरली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, जो बांसुरी बजाई जाती है ना, जो श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, लेकिन वो मुरली नहीं, लेकिन ये उसका प्रतीक है। जैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो हम सुनते हैं गोप गोपियां उस मुरली को सुनकर आनंद विभोर हो जाते थे, इतनी मधुर तान थी उसकी कि वो अपनी सुखबुद्ध भूल जाते थे, वो मुरली का जो स्वर था वो ऐसा स्वर था। तो परमात्मा के ज्ञान में वो ताकत है कि जब हम वो ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं हर दिन, जो डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य जब हम सुनते हैं परमात्मा के, तो वो महावाक्य हमारे मन को आत्मिक शांति, अतींद्रिय सुख का, आत्मिक आनंद का अनुभव कराते हैं कि आत्मा अपने सारे दुख भूल जाती है। कोई भी दुख है उसके मन में, कोई भी अशांति है, कोई भी परेशानी है, सब उसको सुनकर दूर हो जाता है और मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, मन फिर से वो सुख का अनुभव करने लगता है। तो ये एक तरह से हम कहेंगे ज्ञान अमृत है या ज्ञान स्नान है, जब प्रतिदिन हम उसको सुनते हैं। तो जैसे शरीर को स्वच्छ करने के लिए हम प्रतिदिन स्नान करते हैं ना? तो हमारा शरीर हमें स्वच्छ और स्फूर्ति हमें महसूस होती है। ऐसे ही जब हम ये प्रतिदिन ज्ञान सुनते हैं तो हमारे मन पर जो भी प्रभाव आ जाते हैं, सारे दिन में हम कर्म व्यवहार में आते हैं, तरह तरह के लोगों से हमारा व्यवहार होता है, उसके कुछ प्रभाव हमारे मन पर जरूर होते हैं। तो जब हम मुरली सुनते हैं सब कुछ क्लीन हो जाता है, फिर से हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, फिर से हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। ये अनुभव हम मुरली सुन करके करते हैं। और ये सेवा केंद्रों पर प्रतिदिन सुबह 6:30 या 7 बजे, कोई कोई सेवा केंद्रों पर सुबह 6 बजे अर्ली भी होता है, डिपेंड करता है कि किसको काम पर कब जाना है। तो जो जल्दी काम पर जाने वाले होते हैं, क्योंकि राजयोग जो है वो कर्म योग है, आपने समझा कि हम अपने सांसारिक कर्म करते हुए अपना सब जिम्मेवारी निभाते हुए, बल्कि और बेहतर तरीके से हम उसे निर्वाह कर सकें, उसके लिए ये राजयोग परमात्मा ने सिखाया। लेकिन वो समय हमारा अपना है, मॉर्निंग का समय हमारा अपना समय है ना, तो वो तो समय हम हमेशा निकाल ही सकते हैं। आज की लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट हो गई है कि लोग देर रात सोते हैं और सवेरे देर से उठते हैं ना, सोने का समय हो गया 12 बजे 1 बजे और उठने का समय हो गया अभी 8 बजे 9 बजे, छुट्टी है तो 10 बजे ऐसे उठते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होता है। वैसे भी ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेट टू बेड लेट टू राइज। तो आज हम देखते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, हम सभी को उसका सामना करना पड़ता है। तो हम थोड़ा जल्दी उठेंगे तो हमारे लिए अमृत वेला योग करना, जो आपने यहाँ अनुभव किया, उठे आप अमृत वेला योग के लिए, जो उठे वो हाथ उठाएं। अच्छा, मेजॉरिटी उठे हैं। तो कैसा अनुभव होता है अमृत वेला उठते हैं तो? तो मन सवेरे सवेरे ही शक्ति से, भगवान के प्यार से, आनंद से भर जाता है, और फिर सारे दिन हम जब उसके साथ काम करते हैं तो निश्चित है कि हमारे काम की क्वालिटी में फर्क आ जाता है ना। तो अमृत वेले का समय और मुरली, वो हमारे अपने टाइम में ही हम अपना कर लेते हैं, तो सारा दिन वो स्पिरिचुअल पावर हमारे साथ हम महसूस करते हैं। और फिर बीच बीच में भी, जैसे कहा कि हम परमात्मा, ये तो योग कोई कठिन क्रिया तो है नहीं, योग तो याद करना है। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है तो उसको कोई मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा हमारा पिता है, उसे हमें याद करना है तो उसको याद करने के लिए कोई मेहनत की बात ही नहीं है। किसी भी समय जस्ट थॉट अवे कि मैंने अपना मन ईश्वर की ओर किया, उसकी याद मन में लाई और मेरा योग भगवान से लग गया। तो बीच बीच में भी हम कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि ये कर्म योग है, क्योंकि कर्म के बीच बीच में भी, 1 घंटे में भी हमें थोड़ा भी समय मिला, 1 मिनट भी समय मिला, तो हमने परमात्मा के स्वरूप का ध्यान कर लिया या उसकी जो शक्ति है उसका अनुभव कर लिया। तो इस तरह से सारे दिन में भी बीच बीच में हम उसको अभ्यास करते हुए अनुभव कर सकते हैं। तो आप जब जाएंगे अपने स्थानों पर, हर शहर में सेवा केंद्र हैं, ये अलग अलग कैंपस हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप देख चुके हैं इसलिए मैं इसको वर्णन नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी आप ये सब स्थान तो ज्ञान सरोवर में तो आप बैठे ही हैं, और ये शांतिवन है, शायद जाते हुए आप विजिट कर लेंगे जब लौटेंगे यहाँ से, तो वहाँ पर ये सबसे बड़ा डायमंड हॉल है अपना, जो एशिया का 5वां सबसे बड़ा हॉल है विदाउट पिलर, और इसमें 20,000 की कैपेसिटी है। थ्रू आउट ईयर इसमें प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली ग्रुप था 10,000 का, मदर्स का प्रोग्राम रखा था वहाँ पर, मदर्स रिट्रीट रखी थी, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो हैं मदर्स थे वो अभी वहाँ आए थे। तो ऐसे ये नीचे का कैंपस सबसे बड़ा कैंपस है, लगभग 60 एकड़ में बना हुआ है, वहाँ पे 25,000 का तो अकोमोडेशन है, रह सकते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं थ्रू आउट द ईयर वहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं। वैसे सभी कैंपस में चलते हैं, लेकिन वो कैंपस जो है वो सबसे बड़ा कैंपस है। ये देख रहे हैं आप डायमंड हॉल के इंटीरियर जिसमें सब भरा हुआ है फुल. दादी जी अव्यक्त हुए 25 अगस्त 2007 में. उनकी याद में ये प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, शांति वन में ही बना हुआ है. दादी जी का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था. फिर दादी जानकी जी मुख्य प्रशासिका रहे, जो आपने देखा, और बहुत बड़े बड़े लेवल पर प्रोग्राम होते रहे हैं, होते हैं. एक एक लाख की सभा बड़े बड़े शहरों में इकट्ठी करके भी दादी जी ने और दादी जानकी जी ने प्रोग्राम किए हुए हैं. उसी का एक व्यू है आपको दिखाया गया. दादी हृदय मोहिनी जी जो परमात्मा शिव के माध्यम रहे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के बाद, ये जब उनके तन में परमात्मा शिव हैं उस समय का फोटोग्राफ है ये. क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन उनके आते ही, उनकी प्रवेशता से ही उनकी लुक और उनका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है. और हम वाणी भी चेंज हो जाती थी, तो हम समझ जाते थे कि अब दादी नहीं है, अब बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं. और वो जो वाणी चलाते थे, मेरे पास सैंपल नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुनाती हूँ. साकार मुरली और अव्यक्त मुरली जो उनके माध्यम से चलती थी, वो भाषा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कोई इंसान ऐसे बात कर ही नहीं सकता. वो ज्ञान सुन करके ही समझ में आता है कि भगवान ही ये शब्द बोल सकते हैं. माना कोई अथॉरिटी, जो विश्व की अथॉरिटी है, वही इस भाषा में बात कर सकते हैं. तो ज्ञान से भी समझ में आता था कि हाँ, शिव बाबा बोल रहे हैं, ये दादी नहीं बोल सकती है, वो पता चलता है मतलब उससे. ये अलग अलग स्थान है पांडव भवन के. तो ये था पूरा कैसे परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और उनका जो पूरा संगठन तैयार हुआ, जिन्हें हम दादियां कहते रहे, और कुछ भाई थे उसमें, भाइयों की संख्या बहुत कम थी, वो सब भी अभी नहीं रहे. सिर्फ अब दादी रतन मोहिनी, सिर्फ एक ही दादी जी हैं जो वर्तमान में हैं उस पूरे ग्रुप में से, बाकी सभी जा चुके हैं. अब भारत में आने के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप तैयार हुआ, वो अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये तो टीम वर्क है. दादी जी हमारी निमित्त हैं, वो 100 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन उनके साथ साथ जो पूरी टीम है जो इस कार्य का संचालन कर रही है, वो नेक्स्ट ग्रुप था. जब भारत आने के बाद जो पहला ग्रुप तैयार हुआ सेवाओं में, वो सब दीदियाँ अभी जो हैं वो संभाल रही हैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्य को. लेकिन विशेष जो है, क्योंकि जो स्रोत है वो तो मुरली है, ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय ज्ञान का, या भगवान परम शिक्षक बनकर हमें स्वयं आकर के पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया उन्होंने और अभी भी पढ़ाते रहेंगे जब तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है. तो हम भी गॉडली स्टूडेंट बनकर के उस पढ़ाई को पढ़ें, इस भाग्य को प्राप्त करें कि जब स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने के लिए इस दुनिया में आए, तो हमने भी परमात्मा से उस शिक्षा को प्राप्त करके अपने पूरे कल्प के भाग्य को बनाया. ये एक जन्म का नहीं, परमात्मा कोई हमें एक जन्म की प्राप्ति नहीं कराते ना. और शिक्षाएं जो हैं वो तो एक जन्म के लिए होती हैं, लेकिन परमात्मा की ये जो शिक्षा है वो जन्म जन्मांतर के लिए है, हमारे आने वाले अनेक जन्मों का भाग्य का निर्माण करती है. तो वो पढ़ाई का भाग्य हमें मिला है, वो दिव्य अलौकिक जन्म हमारा हुआ है ऐसा कहेंगे कि यहाँ आकर के वो अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म हमें मिला है. यस, जो समझते हैं कि ये हमारा दिव्य जन्म है, माना ये हमारा स्पिरिचुअल बर्थ है एक तरह से. एक तो संसार में हमारा जन्म होता है, लेकिन ये हमारा अलौकिक जन्म है, वो हाथ उठाएं. ये भी मैच्योरिटी. तो अब इस दिव्य जन्म में हम अपने जीवन में दिव्यता को बढ़ाते जाएं, तो वो दिव्यता हमारे को परमात्म ज्ञान से ही आएगी, क्योंकि हम रहते तो कलयुग में है ना। तो कलयुग माना पांच विकारों का राज्य है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रबल हैं आज के समय में। लेकिन इनसे हम मुक्त तभी हो पाएंगे जब ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ होगी, तभी हम माया जीत बन पाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन पाएंगे। दिव्यता माना क्या? देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तभी तो हम मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं। तो दिव्यता माना वो डिविनिटी हमारे अंदर तभी आएगी जब हम इन विकारों को जीत पाएंगे। तो वो परमात्मा ज्ञान से हमें शक्ति मिलती है जब हम रोज वो ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करते हैं, तो उससे हमारी स्मृति बदलती है, स्मृति से हमारी स्थिति बदलती है और हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती चली जाती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को यहीं पूरा करती हूँ। ओम शांति। हाँ,
तो इसमें जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा तो क्या ये जो आत्मा तो अमर है, आत्मा तो जाती नहीं, ये ह्यूमैनिटी वे जो शरीर है, बॉडी है, ये पूरी ह्यूमैनिटी वर्ल्ड की ये पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी?
नहीं, कुछ रहेंगे, प्रलय नहीं होती पूरी तरह से, महाविनाश कहते हैं। तो महाविनाश में काफी माना 90% पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी और वो सब आत्माएं वापस परम धाम जाएंगी। 10% जिनमें वो स्पिरिचुअल पावर होगी, यानी आध्यात्मिक शक्ति तभी होगी हमारे अंदर जब हम भगवान से जुड़े हैं, तो वो नई दुनिया को शुरू करने के निमित्त बनेंगे, शुरू करने के निमित्त बच जाएंगे। जब बच जाएंगे हाँ, शिव बाबा हमें ना डेट कॉन्शियस या डेथ कॉन्शियस नहीं बनाते, वो सिर्फ हमें सावधान करते हैं समय के प्रति, सावधान करते हैं। माना समय बहुत कम है, बहुत गई थोड़ी रही, जैसे मानो मौसम की फोरकास्ट होती है ना, साइंस के पास ये पावर है कि तूफान आने वाला है तो बता देंगे कि इतने समय में तूफान आ जाएगा, इतना नुकसान होगा, जो भी डेंजर एरिया में रहते हैं चले जाएं यहाँ से, तो उनका जान माल की हानि नहीं होगी, ये फोरकास्ट करते हैं ना, है ना। लेकिन वो उस नुकसान को नहीं बचा सकते, माना तूफान आने से रोक नहीं सकते, सावधानी दे सकते हैं और आप अपनी सेफ्टी कर लो। तो शिव बाबा भी ये समय जो परिवर्तन का समय है, इस समय को तो बदलना ही है, लेकिन वो समय आ रहा है, माना वो तूफान आ रहा है, आने वाला है दुनिया में, वो फोरकास्ट बाबा ने कर दिया कि ये समय, और इस समय के अनुसार अब हमें क्या अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, समय के अनुसार हमारी सुरक्षा किसमें है, वो हमें उन्होंने समझा दिया। तो ये बता देते हैं वो, बाकी ये नहीं बताते कि इस डेट पर, अभी डॉक्टर किसी मरीज को, उसको पता है कि ये 3 महीना 6 महीना जिएगा और कह दे कि भाई तुम इतना ही जीने वाले हो, तो वो उतना भी नहीं जी पाएगा क्योंकि वो डेथ कॉन्शियस हो जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं बताते हैं, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें डेट डिक्लेयर करके नहीं बताते, वो कहते अचानक होना है, जब भी होगा अचानक होगा, तो वो डेट नहीं है।
हाँ जी,
हाँ ये तो बताया ना, अभी आज से 1250 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। एक हर एक युग जो है वो 1250 साल का है, 5000 साल के साइकिल के हिसाब से। तो कलयुग की डेट तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि लगभग 5000 वर्ष हो गए क्राइस्ट को आए हुए, 2000 साल हो गए, और क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्वर्ग था, वो ऐसा मानते हैं क्रिश्चियन धर्म में। तो 5000 साल लगभग हो गए, क्योंकि 3000 साल पहले हेवन था इस दुनिया में और उनको आए हुए 2000 साल हो गए, तो लगभग 5000 साल का पीरियड पूरा हो गया। तो हम विनाश के तो नजदीक ही हैं, और अब हम सारी तैयारियां भी देख ही रहे हैं, है ना। दुनिया तो बारूद के ढेर पर, यानी इतने तैयारी हैं, इतने एटॉमिक वेपन्स हैं दुनिया में, और कहते हैं कोल्ड वॉर तो चलती ही रहती है, वो कब हॉट वॉर में बदल जाएगी कह नहीं सकते। अभी भी दुनिया में युद्ध कुछ कुछ चल ही रहे, दो युद्ध तो अभी भी चल ही रहे हैं, तीसरे की भी तैयारी है, है ना। तो और आजकल के युद्ध तो आसमान में लड़ने वाले, मैदानों में लड़ने वाले तो युद्ध है नहीं, टारगेट मिसाइल होती है, बटन दबाओ। और तो इसीलिए वो हम नहीं कह सकते कि कब दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। बस यहाँ दिमाग खराब होने की देर है, किसका किसका दिमाग खराब होता है, किस देश वाले का मतलब, और वो कब गलत ऑर्डर कर दे और कब कुछ शुरू हो जाए हम कह नहीं सकते। माना तैयारी पूरी है, वेट इंतजार किसका है वो सब आप जानते हैं, कि ऊपर से जब हाई अथॉरिटी, माना जब शिव बाबा का ऑर्डर होगा कि हाँ अब सतयुग की तैयारी पूरी है और पुरानी दुनिया को अब खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उतना ही इंतजार है, ऐसा है समय। वो तो आप सब जानते हैं, आप खुद उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मुझे तो ज्यादा इसके बारे में ठीक है ओम शांति।